नमस्ते, मैं आरव हूँ। नई नाद्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। सैम न्यूमैन की पुस्तक मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज, इवोल्यूशनरी पैटर्न्स टू ट्रांसफॉर्म योर मोनोलिथ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और विरासती प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है। यह नई माइक्रो सर्विस प्रणाली शून्य से बनाने की विधि नहीं बताती, बल्कि चल रही मोनोलिथिक प्रणाली को व्यवसाय की दैनिक डिलीवरी रोके बिना क्रमशः बदलने का मार्ग प्रस्तुत करती है। न्यूमैन का मुख्य तर्क है कि माइक्रोसर्विसेज अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वे स्वतंत्र परिनियोजन, अलग माप वृद्धि और टीम स्वायत्तता जैसे लाभ दे सकती है, लेकिन वितरित प्रणालियों की जटिलता, नेटवर्क विफलताओं और डेटा समन्वय की नई लागत भी लाती है। पुस्तक इसलिए पहले यह पूछती है कि बदलाव क्यों चाहिए, फिर सेवा सीमाएं पहचानने, पुराने और नए हिस्सों को साथ चलाने तथा डेटाबेस को सुरक्षित ढंग से अलग करने के पैटर्न समझाती है। इसका दृष्टिकोण तकनीक विशेष पर निर्भर नहीं है। इसका उद्देश्य पाठक को एक ही बड़े पुनर्लेखन के जोखिम से बचाकर छोटे प्रयोगों, मापनीय परिणामों और संदर्भ के अनुरूप निर्णयों के माध्यम से पर्याप्त, न कि अनिवार्यतः अधिकतम माइक्रो सर्विसेज तक पहुंचाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, माइक्रो सर्विसेज को अनिवार्य गंतव्य नहीं, संदर्भ आधारित विकल्प मानना। पुस्तक का आरंभ ही उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देता है कि हर बड़ा मोनोलिथ पुराना, दोषपूर्ण और तुरंत तोड़े जाने योग्य है। न्यूमैन के अनुसार मोनोलिथिक प्रणाली के वास्तविक लाभ है, जैसे सरल परिनियोजन ढांचा, स्थानीय डिबगिंग, अपेक्षाकृत आसान एंड टू एंड परीक्षण और एक ही प्रक्रिया में होने वाले लेन देन। समस्या मोनोलिथ होने मात्र से नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब परिवर्तन की गति धीमी हो, अलग हिस्सों की माप वृद्धि एक दूसरे को प्रभावित करे, टीमों की निर्भरताएं बढ़े या किसी हिस्से की विफलता पूरे उत्पाद को बाधित करे। माइक्रो सर्विसेज इन दबावों को कम कर सकती है, क्योंकि अलग सेवाओं को स्वतंत्र रूप से बदला और परिनियोजित किया जा सकता है। फिर भी यह स्वतंत्रता मुफ्त नहीं होती। दूरस्थ कॉल में विलंब, आंशिक विफलता, प्रेक्षणीयता की जरूरत, संस्करण अनुकूलता और अंततः संगत डेटा रखने की कठिनाई बढ़ती है। इसलिए पुस्तक संगठन की टीम क्षमता, परिचालन परिपक्वता, उत्पाद की जरूरत और परिवर्तन की लागत को निर्णय का हिस्सा बनाती है। इस दृष्टिकोण का व्यावहारिक निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। किसी संगठन को संभवतः पूर्ण माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर नहीं चाहिए। बेहतर मॉड्यूल सीमाएं, स्वच्छ आंतरिक इंटरफेस या कुछ स्वतंत्र घटक ही मूल बाधा दूर कर सकते हैं। पुस्तक वास्तुकला को फैशन नहीं, लाभ और लागत के स्पष्ट संतुलन के रूप में देखने की सलाह देती है। दूसरा, बड़े पुनर्लेखन के बजाय क्रमिक माइग्रेशन की योजना बनाना न्यूमैन का केंद्रीय सिद्धांत विकासवादी परिवर्तन है। चालू मोनोलिथ को हटाकर एक साथ नई माइक्रो सर्विस प्रणाली जारी करना आकर्षक लग सकता है, पर इससे लंबे समय तक मुझे ना देने, पुराने व्यवहार को गलत समझने और एक बड़े असफल परिनियोजन का जोखिम बढ़ता है। इसके विपरीत क्रमिक माइग्रेशन में टीम छोटी सीमा चुनती है, उसे अलग करती है, परिणाम देखती है और अगले निर्णय में उस सीख का उपयोग करती है। इस योजना की शुरुआत तकनीकी आरेख से नहीं, लक्ष्य की स्पष्टता से होती है। टीम को जानना चाहिए कि वह परिनियोजन की बाधा घटाना चाहती है, किसी क्षमता को अलग माप वृद्धि देना चाहती है या स्वामित्व स्पष्ट करना चाहती है। फिर वर्तमान निर्भरताओं, व्यवसाय डोमेन, डेटा प्रवाह और उन हिस्सों का मानचित्र बनता है जिनमें बदलाव अधिक दर्दनाक है। इस जांच के बिना सेवा सीमा केवल कोड फोल्डर या डेटाबेस तालिका के आधार पर तय हो सकती है, जो अक्सर गलत विभाजन पैदा करती है। पुस्तक लोगों और संगठन को भी माइग्रेशन का भाग मानती है। सेवा स्वायत्तता तभी सार्थक है जब टीम के पास उसे बनाने, चलाने और सुधारने की जिम्मेदारी हो। छोटे कदम जोखिम सीमित करते हैं, त्वरित लाभ दिखाते हैं और आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। कभी यह प्रक्रिया एक बेहतर मॉड्यूलर मोनोलिथ पर ही रुक सकती है। न्यूमैन इसे विफलता नहीं मानते, यदि मूल व्यावसायिक और तकनीकी लक्ष्य पूरे हो गए हों। तीसरा, स्ट्रैंगलर फिग और सहायक पैटर्नों से व्यवहार को सुरक्षित रूप से निकालना, मोनोलिथ को विभाजित करना, केवल कोड को नई रिपोजिटरी में ले जाना नहीं है। उपयोगकर्ता अनुभव, अनुरोध मार्ग, पुराने सहयोगी घटक और उत्पादन व्यवहार सभी को संक्रमण के दौरान संभालना पड़ता है। पुस्तक का प्रमुख स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न इस समस्या का क्रमिक समाधान देता है। नया कार्य पुराने कार्य का चुना हुआ हिस्सा नई सेवा में बनाया जाता है, जबकि बाकी अनुरोध मोनोलिथ संभालता रहता है। समय के साथ मार्ग बदलते जाते हैं और पुराना भाग हटाया जा सकता है। यह पैटर्न इसलिए उपयोगी है क्योंकि नई सेवा को वास्तविक उत्पादन परिस्थितियों में सीमित दायरे से परखा जा सकता है, साथ ही परिवर्तन को वापस लेने की क्षमता बनी रहती है। लेकिन अनुरोध किस घटक तक जाए, पुराने और नए व्यवहार कब समान माने जाएं और सीमा पर प्रमाणीकरण या त्रुटि प्रबंधन कैसे हो, ये निर्णय स्पष्ट होने चाहिए। न्यूमैन अन्य सहायक पैटर्न भी देते हैं। यूआई कंपोजिशन अलग बैकएंड क्षमताओं को एक अनुभव में जोड़ने में मदद करता है। ब्रांच बाय एब्स्ट्रैक्शन पुरानी निर्भरता के ऊपर एक अमूर्तन रखकर उसके कार्यान्वयन को चरणों में बदलने देता है। पैरेलल रन में नया और पुराना समाधान साथ चलाकर परिणाम मिलाए जाते हैं। डेकोरेटिंग कोलैबोरेटर और चेंज डेटा कैप्चर जैसे तरीके संक्रमण के दौरान सहयोग और डेटा बदलावों को संभालते हैं। इनका साझा उद्देश्य है व्यवहार बदलते समय जोखिम को छोटे जांचे जा सकने वाले हिस्सों में बांटना। चौथा, डेटाबेस विघटन में स्वामित्व, समन्वय और लेन देन की कठिनाई। पुस्तक डेटाबेस को माइक्रोसर्विस माइग्रेशन का सबसे कठिन हिस्सा मानती है। कोड को अलग प्रक्रिया में चलाना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, पर कई सेवाओं द्वारा साझा तालिकाओं, विदेशी कुंजियों और एकल लेन देन पर निर्भर डेटा को अलग करना स्वामित्व और संगतता के प्रश्न उठाता है। यदि हर सेवा किसी भी तालिका को बदल सकती है तो सेवाएं नाम मात्र की स्वतंत्र होती है और परिवर्तन फिर भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। न्यूमैन संक्रमण के लिए कई पैटर्न प्रस्तुत करते हैं। डेटाबेस व्यू पुराने उपभोक्ताओं को परिचित आकार में डेटा दे सकता है। डेटाबेस रैपिंग सर्विस या डेटाबेस एज अ सर्विस इंटरफेस सीधे डेटाबेस पहुंच को नियंत्रित कर स्वामित्व को धीरे धीरे एक सेवा के पास ले जाते हैं। स्प्लिट टेबल और एप्लीकेशन में डेटा सिंक्रोनाइजेशन जैसे उपाय डेटा संरचना को चरणबद्ध रूप से अलग करने में काम आते हैं। ट्रेसर लाइट जैसी तकनीकें पुराने और नए भंडार के बीच बदलावों को जांचने में सहायक हो सकती हैं। पुस्तक कोई जादुई शून्य जोखिम वाला डेटा विभाजन नहीं सुझाती। वितरित सेवाओं में एकल एसईआईडी लेन देन के स्थान पर समन्वय, पुनर्प्रयास, अस्थायी असंगति और प्रतिपूरक कार्यों को स्वीकारना पड़ सकता है। सागा जैसे विचार इसी वास्तविकता से जुड़े हैं। इसलिए सही लक्ष्य केवल अलग डेटाबेस नहीं बल्कि स्पष्ट डेटा स्वामित्व, विश्वसनीय बदलाव प्रवाह और विफलता की स्थिति में समझ आने वाला व्यवहार है। मंत में सेवा सीमाओं, टीम संरचना और सफलता मापने के बीच संबंध। पुस्तक सेवा विभाजन को केवल तकनीकी डिजाइन अभ्यास नहीं मानती। उपयोगी सेवा सीमा सामान्यतः किसी स्पष्ट व्यावसायिक क्षमता या सीमित डोमेन संदर्भ के आसपास बनती है। डोमेन ड्रिवन डिजाइन के विचार यहाँ सहायक हैं, क्योंकि वे यह पूछने को प्रेरित करते हैं कि कौन से नियम, शब्दावली और डेटा वास्तव में एक साथ बदलते हैं। यदि दो हिस्सों को हर परिवर्तन में साथ संशोधित करना पड़ता है तो उन्हें अलग सेवाओं में बांटना नई नेटवर्क निर्भरता पैदा कर सकता है, स्वायत्तता नहीं। सीमा चुनने में परिवर्तन की आवृत्ति, अलग माप आवृत्ति की जरूरत, डेटा स्वामित्व और टीम का ज्ञान महत्वपूर्ण संकेत है। बहुत बड़ी सेवा मोनोलिथ की समस्या दोहरा सकती है, जबकि बहुत सूक्ष्म सेवा अत्यधिक दूरस्थ कॉल, जटिल परीक्षण और परिचालन बोझ बढ़ाती है। न्यूमैन का पर्याप्त माइक्रो सर्विसेज वाला विचार इसी अतिरेक से बचाता है। टीम संरचना भी परिणाम बदलती है। सेवा का स्वामित्व रखने वाली टीम को उसके निर्माण के साथ परिनियोजन, निगरानी और उत्पादन समस्याओं की जिम्मेदारी लेने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा स्वतंत्र सेवा भी बदलाव के लिए कई टीमों की अनुमति पर निर्भर रहेगी। अंत में माइग्रेशन की सफलता को मापना जरूरी है। परिनियोजन समय, परिवर्तन में लगने वाला प्रयास, विफलता का प्रभाव, पुनर्प्राप्ति क्षमता और व्यावसायिक डिलीवरी जैसे संकेत बताते हैं कि विभाजन वास्तव में उपयोगी है या नहीं। इससे वास्तुकला संबंधी निर्णय अनुमान के बजाय परिणामों पर आधारित होते हैं। निष्कर्ष में मोनोलिथ टू माइक्रोसर्विसेज उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स, तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं और उत्पाद टीमों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो किसी चलती हुई प्रणाली को बदलने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह उन पाठकों के लिए कम उपयुक्त है जो केवल माइक्रो सर्विसेज की परिभाषा या किसी एक फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल चाहते हैं। पुस्तक का मूल्य इसके निर्णय ढांचे में है। यह पहले बदलाव के कारण लागत और संगठनात्मक तैयारी की जांच कराती है, फिर धीरे धीरे निष्पादित किए जा सकने वाले पैटर्न देती है। पाठक इससे सेवा सीमा चुनने, पुराने और नए व्यवहार को साथ रखने तथा डेटा स्वामित्व स्थानांतरित करने के व्यावहारिक प्रश्नों को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। विशेष लाभ यह है कि पुस्तक डेटाबेस विघटन को गौण विवरण नहीं मानती। साझा डेटा, समन्वयन और वितरित लेन देन की कठिनाइयों पर इसका केंद्रित ध्यान इसे सामान्य माइक्रो सर्विस परिचयों से अलग बनाता है। इसी श्रेणी की कई पुस्तकें आदर्श अंतिम आर्किटेक्चर, कंटेनर मंचों या नए सिस्टम डिजाइन पर अधिक केंद्रित होती है। न्यूमैन की अलग पहचान संक्रमण की वास्तविकता है, जहां पुरानी प्रणाली उपयोगकर्ताओं, राजस्व और दैनिक बदलावों के साथ जीवित रहती है। स्ट्रैंगर फिग, ब्रांच बाय एब्स्ट्रैक्शन और चरणबद्ध डेटा पैटर्नों के माध्यम से वह एक ही विशाल परियोजना के बजाय नियंत्रित प्रयोगों का रास्ता दिखाते हैं। सबसे उपयोगी संदेश यह है कि सफल परिणाम हमेशा अधिक सेवाएं नहीं, बल्कि समस्या के अनुपात में पर्याप्त संरचनात्मक स्वतंत्रता हो सकता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सैम न्यूमन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।